ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओके, हम जड़ भरत और रघुवंश के बीच में डिस्कशन कर रहे थे और फिफ्थ कैंटो 12 चैप्टर फर्स्ट वर्स है। सो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि भरत महाराज, जड़ भरत ने रघुवंश को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और उसके बाद रघुवंश महाराज ये समझ गए कि जड़ भरत कोई साधारण कोई भिखारी नहीं है, पागल आदमी नहीं है, एक्चुअली आत्मअनुभवी व्यक्ति है। और रघुगण कह रहे नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विज बंधु लिंग निगूण नित्य अनुभवाय तुभ्यम। रघुगण महाराज कह रहे हैं कि मेरा आपको प्रणाम है क्योंकि आप भगवान से अभिन्न है। भरत, जड़ भरत भगवान से अभिन्न, ऑफकोर्स भगवान तो नहीं थे जड़ भरत, मगर भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त कर जाता है, मेरे से ही बन जाता है गुणों में। जैसे मैं शुद्ध हूं वो भी शुद्ध हो जाता है, जैसे मुझे माया नहीं छू सकती उसको भी माया नहीं छू सकती। तो इसीलिए भक्तों को कभी कभी भगवान से अभिन्न भी कहा जाता है। किंतु प्रभोर यार साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र, साक्षात हरि के समान ही माना जाता है भक्तों को। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है, इसलिए। सो आप शुद्ध रघुवंश कह रहे हैं कि आपके प्रभाव से मेरे जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन हैं, जितने भी मुझे संशय थे वो सब अब नष्ट हो गए। आप ब्राह्मण के वेश में अपने आप को, अपने आत्म अनुभव को छुपाकर बैठे हुए हैं और कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रघुवन महाराज मैं ये समझ लो लाइन पे आ गए और कुछ नहीं है। पहले तो बहुत ही बोल रहे थे कि तुम ये हो वो हो, तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, यही कुड अंडरस्टैंड। पॉइंट ये है कि अगर किसी को कुछ, अगर कोई बहुत अहंकारी है जैसे रघुगण, और बहुत अमीर भी थे और राजा भी हैं, और किसी को कुछ समझाना है तो उसका तरीका है आप अगर नॉलेज होनी चाहिए और रियलाइजेशन भी। अगर ज्ञान और अनुभव नहीं है तो फिर आप प्रचार नहीं कर सकते। और वो भी है कि जड़ भरत ने रघुगण को फ्लैटर नहीं किया, चापलूसी नहीं की। सो अगर आप सही सही संदेश दोगे किसी को तो दूसरा, अगर भगवान की कृपा होगी तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा। और रघुगण समझ गए, रघुगण कह रहे हैं कि रघुगण समझ गए, ज्वरा माया अर्थस्य यथा अगाधम साथ। वो कह रहे हैं भाई मुझे समझ आ गया है कि मेरा शरीर गंदगी से भरा पड़ा है। मतलब ये शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव है कि शुद्ध भक्त के थोड़े से संग से अनुभव आ जाता है, एटलीस्ट कन्विक्शन आ जाती है, निष्ठा तो आ ही जाएगी चाहे अनुभव नहीं आएगा। तो कह रहे हैं भी मेरा शरीर, माय बॉडी इज फिल्ड विद डर्टी थिंग्स एंड माय विजन हैज बीन बिटन बाय सर्पेंट ऑफ प्राइड। तो साधु संग से व्यक्ति को अपने अंदर गंदगी दिखाई देने लगती है, ये पहली चीज होती है। साधु आपको दिखाता ही है कि भी आप में कूड़ा क्या है, यही दिखाता है। तो उनको समझ आ गया भाई मेरे शरीर गंदगी से भरा पड़ा है, विष्ठा से, मूत्र से, ये मेरा शरीर है, और मेरी आंखें अहंकार की गंदगी से भरी हुई है। मैं समझ रहा था मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं समझ रहा था ये तो बकवास आदमी है। जब तक अहंकार का पर्दा होता है आंखों के सामने, तब तक हम भक्तों को पहचान नहीं सकते, हमें भक्त बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे, कहेंगे क्या है, क्या मतलब क्या कर रहे हैं। ड्यू टू माई मेटेरियल कंसेप्शंस आई एम डिजीज्ड, मैं बीमार भी हूँ क्योंकि मुझे भोग की बीमारी लगी है। एक्चुअली जड़ भरत पिछले चैप्टर में समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो भोग की बीमारी हटाओ, जब तक यह बीमारी लगी रहेगी तब तक बार बार योनियों में आना पड़ेगा। अब आप खुद देख लो आप में कितना मन करता है भोग करने का, और कोई भी नहीं कह सकता कि हम 100% फ्री है। कौन कौन एक डिवोटी कह रहा था महाराज से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट ही वाज सेइंग कि महाराज जब मैं भक्ति कर रहा था तो एक टाइम पता लगा कि काम वासना खत्म ही हो गई। महाराज ने लगा खत्म हो गई, इम्पॉसिबल है। भोग वासना जीरो हो जाना असंभव है। पता एक बार एक चौपाटी में भी था मैं तो राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे तो एक कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी आया तो कहता है कि महाराज कब तक, मतलब हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं अभी तक भोग वासना है। ऑफकोर्स ऐसे ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस समझते हैं ना आप लोग, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अनकंट्रोल नहीं है, है कम है मगर है अभी भी, तो क्या करें। तो राधानाथ महाराज तो आई थिंक साइड में कौन बैठे थे, गौर गोपाल में समझते हैं। सो गौर गोपाल तो ही इज अ सीनियर ब्रह्मचारी चौपाटी, मतलब वन ऑफ द वेरी सीनियर ब्रह्मचारी, मतलब 25 साल हो गए, 20 साल हो गया जितना मुझे टाइम हुआ उनका। तो ही वॉज देयर तो राधानाथ बोला अच्छा तुम्हारी भोग वासना खत्म है, उन्होंने गौर गोपाल से तुम्हारी खत्म हो गई। सो ने कहा कि मेरी भी खत्म नहीं है, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आप में है भोग वासना, तो प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने कहा मेरे में है मगर टाइम नहीं है उसके लिए। सो बस टाइम की बात है, अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो चीज पकड़ लेगी आपको, आपको भगवान की सेवा में अपने आपको बिजी रखना पड़ेगा, वरना ये माइंड को तंग, ये बीमारी लगी हुई है ना कई जन्मों से, एक सेकंड में नहीं हटेगी। दवाई तो ले रहे हम, तो मैं भी दवाई ले रहा हूँ अभी इस बीमारी के लिए, अभी तक इतने दिन हो गए दवाई ले रहा हूँ, और ये बीमारी तो करोड़ों जन्मों से लगी है। ये भोग करने की आदत आसानी से नहीं छूटती, आसानी से नहीं छूटती। सो भरत भाई जड़ भरत जी का तो ब्लैंक स्टेटमेंट है कि जब तक भोग वासना हटेगी नहीं तब तक आप इस संसार से नहीं निकल रहे, बस चाहे आप 16 माला कर लो, चाहे 64 माला कर लो, चाहे आप वृंदावन परिक्रमा चले जाओ, चाहे पूरी भागवतम रट डालो, एक ही चीज है भोग वासना खत्म हुआ है या नहीं है। अब ये बात है माला करने से परिक्रमा करने से ये तो साधन ही है भोग वासना खत्म करने का, मगर अगर आप साधन करते जा रहे हो और वही की वही चीज बीमारी बनी पड़ी है तो फिर तो नहीं छूट रहे हम यहाँ से, फिर तो दोबारा आना पड़ेगा। चाहे आपके गुरु प्रभुपाद जी क्यों ना हो जाए, चाहे आपके गुरु भक्ति विकास स्वामी ने हो जाए, या कोई भी कर लो आप, ABCD नाम रख लो, चाहे भगवान ही आपके गुरु क्यों ना हो जाए, यू हैव टू कम बैक। सो अब आपको जेन्युइनली देखना है आप क्या कर रहे हो, अपने हार्ट में झांक के देखना। एक्चुअली पता नहीं महाराज एक पता है हमारे गॉड ब्रदर है, महाराज उनको समझा रहे थे कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो महाराज ने कहा अपने हार्ट में झांक के देखो तुम गलत कर रहे हो। तुम उसको महाराज की बात भी समझ नहीं आ रही, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। सो भोग वासना इतना अंधा कर देती है आदमी को कि गुरु और सीनियर डिवोटीज की बात समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आएगी आपको। मगर रघुगण महाराज का सौभाग्य कि जड़ भरत की बात समझ गए, मतलब आई डोंट नो वो इसलिए समझे क्योंकि जड़ भरत वॉज पावरफुल, नहीं वॉज पावरफुल, उनकी बात पेनिट्रेट कर गई अंदर उनके हार्ट में। हम लोग बोलते हैं तो ज्यादा लोग चेंज नहीं होते, नहीं कितने लोगों को चेंज किया आपने, चेंज किया किसी को, ज्यादा लोग को नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारी बात घुसती नहीं उसके अंदर। क्यों नहीं घुसती, हम मतलब आप लोग भी लेक्चर देते हो, आपकी बात से कोई चेंज हुआ है, कोई फुल टाइम डिवोटी बना है, फुल टाइम डिवोटी तो फीमेल प्रोग्राम है आपका, तो कोई माता जी कोई बन गई डिवोटी, अभी तो नहीं बनी, मगर आप वही बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो चीज आपको अनुभव नहीं, आप दूसरे को अनुभव नहीं करा सकते। सिंपल रूल है, जो आपको अनुभव है वही उतने अनुभव करा सकते हो, उससे एक रत्ती भी आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि जहां तक आप हो वहीं तक तो उठा पाओगे आदमी को खींच के, उससे ऊपर तो नहीं कर सकते ना, उससे ऊपर तो ऊपर वाला उठाएगा, हम नहीं कर पाओगे। आप चाहे कितने लॉजिक भिड़ा लो, कितने ही कुछ बोल लो, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो जड़ भारत वॉज पावरफुल पर्सनैलिटी, बल्कि राहुगण महाराज कह रहे हैं अब तो भगवान जैसे ही हो। कितने, पता नहीं कितने मिनट बोला होगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कितने मिनट बोला होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक कितना 20-25 मिनट बोला होगा आई थिंक। और राहुगण महाराज में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। राहुगण महाराज कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, योर नेक्टेरियन इंस्ट्रक्शंस आर द प्रॉपर मेडिसिन फ्रॉम वन सफरिंग फ्रॉम सच अ फीवर एंड देयर कूलिंग वाटर्स फॉर वन स्कॉच्ड बाय हीट। कह रहे हैं कि आपके, आपने जो मुझे उपदेश दिया है वो अमृतमयी है। अगर आप उपदेश पढ़ोगे राहुगण महाराज, भरत महाराज के, तो अमृतमयी कहीं से नहीं लगेंगे। वो तो बैंड ही बजा रहे हैं कि माया में हो, जब तक मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तीन गुण काम कर रहे हैं। नहीं, अब ये तो कह रहे हैं अमृतमयी है। सो क्या है मतलब, उसे कृष्ण लीला अमृतमयी, ये भी अमृतमयी है। एटलीस्ट राहुगण की एनालिसिस तो यही है। सो कुछ लोगों को अमृतमयी नहीं लगती बात है, नहीं है कि यार आप बार बार बोले जा रहे हो माइंड कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो, संसार से बाहर निकलो। कृष्ण लीला का है, कृष्ण लीला डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा। उसके बिना ये, इसके बिना भी ये सबका कोई फायदा नहीं है। मतलब हम सिर्फ यही डिस्कस करने नहीं आए, सब कुछ बेकार है। बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है समझना कि माइंड कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसके बिना भगवान खुशी नहीं होंगे। भगवान खुश करने का रास्ता, भगवान खुश होते हैं जिसका क्या है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, मनमान अस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे, कि हे कृष्णा मैं अपने मन को पकड़ के आपके कमल रूपी चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल तो पकड़ना तो पड़ेगा ना इसको, कैसे होगा? ये तो बेवकूफों की तरह पता नहीं आ गया बोलता रहेगा। So he could understand, he's Raghuvan Maharaj understand kar rahe, whatever doubts I have about particular subject matter, I shall ask you about latter. About latter? I shall ask you about later. ठीक है, हाँ later, हाँ। तो जब भी मुझे questions है मैं बाद में पूछूंगा, कोई problem नहीं है। For the time being, these mysterious yoga instructions you have given me for self-realization appear very difficult to understand. रोगन महाराज ने कहा देखो मुझे इतना तो समझ आ गया है कि शरीर बकवास है, मेरा मन बकवास है, मैं बकवास हूँ, मगर आपकी बातें बाकी समझ नहीं आई मुझे, करना क्या है वो क्लियर नहीं है। प्लीज रिपीट देम इन सिंपल वे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड देम, माइंड इज वेरी इंक्विजिटिव, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। कहना भी डाउट्स क्लियर नहीं हुआ, प्लीज रिपीट कीजिए मुझे इंस्ट्रक्शंस क्या है। और अब भरत महाराज बोलेंगे। कि शरीर थक जाता है, मगर एक्चुअली थकावट कुछ नहीं होती, थकावट माया है। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, शरीर थक रहा है तो थकावट कौन अनुभव कर रहा है? शरीर थोड़े ना कर रहा है, आत्मा कर रही है। मगर राहुगण कह रहे हैं कि थकावट माया है, मतलब राहुगण कह रहे हैं कि वो अनुभव जो आत्मा को हो रहा है थकावट का, वो भी माया है। अब ये समझ नहीं आ रहा राहुगण को, वैलिड क्वेश्चन है नहीं है। चलो ठीक है, शरीर थक रहा है वो तो हमने मान लिया, मगर अनुभव तो आत्मी कर रही है ना, वो तो वास्तविकता है ना, मगर राहुगण कह रहे हैं वो भी माया है, वो भी माया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इट सिंपली एग्जिस्ट एज अ मैटर ऑफ फॉर्मैलिटी, बाय सच इंक्वायरीज एंड आंसर्स नो वन कैन कम टू कंक्लूजन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। because your presentation of the statement, my mind is little disturbed. So Bharat Maharaj ne bahut bada statement bol diya ki aise kabhi kabhi bolte nahi ki koi koi vyakti, koi aapka friend thak raha hota hai to bolte hain yaar tere mind mein thakavat hai, kya rehta hai ye bas thak raha, chal nahi koi nahi thak raha bakra, aise kehte nahi बच्चे को लगाए थे, बच्चे कहते बाबा गोदी उठा लो, कोई नहीं थक रहा, चल थप्पड़ मार के। अब रहोगन एक्चुअली यही कह रहे हैं, हम तो बच्चे को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, मगर रहोगन कह रहे हैं इस संसार में जो भी मन से जो भी अनुभव कर रहा है वो असलियत नहीं है, वो आत्मा अनुभव कर रही है चीजें, मगर वो अनुभव जो है वो माया है, ये भरत महाराज कह रहे हैं। तो रघुगन कह रहे हैं तो कंफ्यूजिंग है, अनुभव तो रियलिटी है ना, मुझे हो रहा, मान लीजिए आपके शरीर को मैं चुभाऊं तो क्या अनुभव होगा, दर्द का नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैं बोलूं कोई कोई दर्द वर्द नहीं है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं दर्द तो हो ही रहा है, मगर भरत महाराज कह रहे हैं नहीं, दर्द का अनुभव ही माया है। और इसलिए जब समाधि में होते हैं तो आप अगर तलवार भी घुसा दो दर्द नहीं अनुभव होगा, पता है आपको, समाधि में भूख भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो रोगन कह रहे हैं भी मुझे तो तभी कह रहे हैं वो मास्टर ऑफ योगिक पावर, तभी कह रहे हैं आप कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े योगी लगते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है। अब भरत महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है। द सेल्फ लाइज्ड ब्राह्मण जड़ भरत सेड अमंग द वेरियस मटेरियल कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस There are various forms and earthly transformations. हिंदी में पढ़ूं क्या? इंग्लिश में पढ़ूं?
हिंदी में भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, वैसे एक्सप्लेन।
हाँ, जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश भी आ जाएगी। So कह रहे हैं among various material combinations, permutations, there are various forms and earthly transformations. So कह रहे हैं कि भी देखो इस संसार में जो भी तुम्हें शरीर दिखाई देते हैं, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सब पृथ्वी जलवायु अग्नि से ही बने पड़े हैं, नहीं अलग अलग प्रपोर्शंस है नहीं, मोटे आदमी है उसमें हवा ज्यादा है, तो पतला आदमी है उसमें पृथ्वी ज्यादा है, मतलब ऐसे ही है, और क्या है, ये जो टेबल है इसमें पृथ्वी का तत्व ज्यादा है, नहीं जूस है उसमें पानी का तत्व ज्यादा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो पांच तत्वों का कॉम्बिनेशन ही है सारी चीजें इस संसार में। दिस मूव ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ एंड आर कॉल्ड पैलिंक्विन कैरियर्स। सो कह रहे हैं कि भी जो तुम्हारे जो सेवक हैं वो भी पांच तत्वों से बने, तुम्हारा जो तो राजा उस पर बैठा होता ना, क्या कहते हैं उसको, पैलिंक्विन पालकी, तो पालकी भी पांच तत्वों का बना है, तुम्हारा शरीर भी पांच तत्वों का बना है, और संसार भी पांच तत्वों का बना है, अब यही चल रहा है ना, फायर अर्थ वाटर अर्थ ईथर, बस यही है। Those material transformations which do not move are gross material objects like stones. So, जो नहीं चलते वो पत्थर है, जो चलते हैं, जो शरीर है वो चलने वाली चीज है, वो उसमें पैर है, सर है, you see is seeing in a different way. Upon the shoulders is the wooden palanquin. और ये पांच तत्वों का जो शरीर बना है तुम्हारे सेवकों का, इनके शोल्डर पे कंधे पे तुम्हारी पालकी है, और तुम्हारी पालकी भी इट इज मेड ऑफ वुड, तुम्हारी पालकी भी उससे बनी है लकड़ी से। द बॉडी ऑफ द किंग इज सिंपली अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और पालकी में जो तुम्हारा राजा का शरीर बैठा है वो मिट्टी का बना हुआ है, बट विद इन दैट बॉडी योर लॉर्डशिप इज सिचुएटेड, और उस शरीर के अंदर तुम बैठे हो, यू सी धरती पांच तत्वों की बनी है, उसमें जो शरीर खड़े हैं सेवकों के वो पांच तत्वों के बने हैं, उन कंधे पे जो पालकी है वो लकड़ी की बनी है, उस पालकी में जो राजा का शरीर है वो मिट्टी का बना है, और उसके अंदर तुम शरीर में बैठे हो, सिटिंग एंड फॉल्सली थिंकिंग दैट यू आर किंग ऑफ द स्टेट ऑफ सावीरा, और तुम मूर्खों की तरह सोच रहे हो कि मैं पूरे संसार का राजा हूं, यूजी देखने का बिल्कुल ढंग अलग है। सो डिवोटी ये नहीं देखता कि ये आदमी है, ये औरत है, ये डिवोटी देखता है तो मिट्टी के ढेले हैं और कुछ नहीं है, यानी हम तो ऐसे ही देखते हैं, हम तो ना देखते हैं कि अनुराग है, अंजू है, सोनाली है, ये पुतला है, ये पुतली है सारी, और क्या है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने को समझ सकते हो मैं ब्यूटीफुल हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम है, मगर एक्चुअली यू आर जस्ट सिंपली अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और उस पिंड में गंदगी भरी है, इससे 1% ज़्यादा कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उसके अंदर बैठ के सोच रहे हो कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं अनुराग हूँ, मैं केशव आनंद हूँ, मैं हाई फाई हूँ, मुझे लोग को सुनना चाहिए, मगर एक्चुअली मैं क्या, मैं इसमें बंद हूँ बल्कि, और अब फॉल्सली सोच रहे हैं कि मैं ऐसा 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 हूँ। ये एक डिवोटी की दृष्टि है, अगर आप इस दृष्टि से थोड़ा सा भी धरोगे तो माया में फंस जाओगे, बस यही है। इसलिए डिवोटी ज़्यादा, मतलब कोई डिवोटी ज़्यादा टाइम वेस्ट थोड़े ना करते अपने शरीर पे, कोई नहीं करता अपना टाइम वेस्ट शरीर पे, कौन टाइम वेस्ट करे, मिट्टी के ढेले पे कौन टाइम वेस्ट करे, नहीं, व्हाई डू वेस्ट टाइम ऑन दिस। इसीलिए जब डिवोटी बीमार भी होते हैं तो ज़्यादा टेंशन में नहीं होते, एटलीस्ट अपने नहीं होते, हाँ इस बात का टेंशन ज़रूर होती है कि अगर बीमार हो जाएंगे तो सेवा रुकेगी, अदरवाइज ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। सो वी शुड लर्न कि भरत महाराज किस तरह देख रहे हैं, इसलिए जो गृहस्थ हैं उनको अपने बच्चे को भी देखने चाहिए, ये हम बड़े मिट्टी के ढेले हैं, छोटे मिट्टी के ढेले हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे है ना, ऐसे देखना मुश्किल होता है, बट ऐसा है। वो मिलते नहीं, वो जो टॉयज की दुकान पे छोटे छोटे दिवाली पे मिलते नहीं, डॉल वॉल नहीं मिलती, छोटी छोटी मिट्टी की मिलती थी ना पहले, मिट्टी की मिलती थी, अब तो टॉयज मिलती थी, ऐसी बच्चे छोटा सा ही तो होता है, वो पैदा हो गया मिट्टी का, एक दूसरा पैदा हो गया टिंग, और हम भी फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इस मिट्टी के ढेले में स्पेशलिटी है कि बड़ा हो जाता है, इस सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल इल्यूशन, इल्यूशन है। सो रघुवंश ने कहा था इजीली समझाओ, इजीली समझा रहे, नहीं समझा रहे, अब समझ आ रहे, नहीं आ रहे, अब थोड़ा वो थीम डेवलप करेंगे। इन फैक्ट हाउएवर दैट दिस इनोसेंट पीपल कैरिंग योर प्लैंक्विन विदाउट पेमेंट आर सर्टनली सफरिंग ड्यू टू दिस इनजस्टिस, तो कह रहे हैं कि भी तुम्हारे एक्चुअली तुम अननेसेसरली इनको, जो तुम्हारे सेवक है तुम अननेसेसरली इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये सोच के कि ये सेवक है और तुम राजा हो, मगर तुम एक मिट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बल्कि तुम राजा नहीं हो, तुम बल्कि माया के सेवक ही हो, तुम माया, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो बल्कि तुम बंधे हुए हो माया में, तुम्हें ये पता ही नहीं। देयर कंडीशन इज वेरी लेमेंटेबल बिकॉज यू हैव फोर्सफुली एंगेज्ड देम इन कैरिंग योर पैलेंक्विन, दिस प्रूव्स दैट यू आर क्रूअल एंड अनकाइंड। देखो सीधा बोल दिया उन्होंने, मतलब ही डिडंट रियली, ही डिडंट केयर। क्या आप कमेंट्स क्या आप लोग इस पे बोलना चाहिए था, ऐसा है
नहीं,
हमें बोलना चाहिए, ऐसा है नहीं, ये बता दो बस,
सुन सके
नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए,
हम लोगों को वेल प्रभुपा कहते थे सिंपली रिपीट, प्रभुपा तो ये कहते। सो हमारा अनुभव ये है कि हमें रिपीट करना है और उसमें सक्सेस है, इसको अनुभव कहते हैं, इसका अनुभव नहीं है, मगर ये अनुभव है कि रिपीट करोगे तो उसमें पावर है, और रिपीट नहीं करोगे तो जोक सुनाते रहोगे सुनाते, कोई कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं होने वाला। सो हम भी बोल सकते हैं कि भी भागवतम कह रही है कि जो राजा है बड़े बड़े आदमी है क्रूअल है और अनकाइंड है, सो क्रूर है सब। क्रूअल का वर्ड क्या होगा हिंदी में, क्रूर तो अच्छा शब्द है, क्रूअल सिनोनिम होना चाहिए ना हिंदी में,
निर्दयी,
निर्दय फिर भी ठीक है, निर्दय थोड़ा सा दयावान, दया आ रही हो, निर्दयी दुष्ट हो सकता है, है?
बर्बर
बर्बर ये होता है
बर्बरता।
ये क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा खुंकार, ये हो है, ये आ गया, ये बोल सकते हो, ये सही है, ये दरिंदा बोल सकते हो। ये जितने अमीर लोग हैं, जितने हाई फाई, सब दरिंदे हैं सब, और कुछ नहीं है। That's all I mean to say, भरत महाराज के एनालिसिस तो यही है, you're cruel and unkind, क्योंकि वो अपने अपने इस्तेमाल कर रहे दूसरों को एक्सप्लॉइट। मतलब सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट MNCs के डायरेक्टर्स हैं, सब दरिंदे हैं, और क्या, तो गंदे लोग हैं सब, सब दूसरों को यूज ही तो कर रहे हैं, सोचे कि मैं ये हूँ मैं वो, बट एक्चुअली क्रूल एंड काइंड। इसलिए इसलिए जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे वो दरिंदा है, वो क्रूअल है, वो गंदा आदमी है। जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ, जैसे राजा सोच रहा है, वो एक्चुअली वो क्रूअल ही है, वो काइंड हो ही नहीं सकता, वो दयावान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं ये हूँ, मैं सो एंड सो एंड सो हूँ, ये आदमी ये है, तो ये मुझसे नीचे है या ये मुझसे ऊपर है, ऐसे ही तो नापेगा वो, और क्या करेगा शरीर के स्तर पर। तो और जो ऊपर वाले होंगे उनकी चापलूसी करेगा, जो नीचे वाले होंगे उनको एक्सप्लॉइट करेगा, और क्या करेगा, दैट्स ऑल। तो इसलिए जो भी इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, जो भी शरीर के स्तर पर, उन पर दया दिखानी नहीं चाहिए। अगर उन पर दया दिखानी है तो एक ही चीज करो, उनको समझाओ कि भैया तुम शरीर नहीं हो, भगवान की शरण ले लो, भक्ति करो, अदरवाइज उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, जो आध्यात्मिक जिनकी दृष्टि होती है वो दान पुण्य और दया व्या वो नहीं करते, वो नहीं कंबल बांटते, वो नहीं खाना बांटते, क्योंकि उनको पता है कि जो ज्यादा ये सब करेंगे तो उनकी क्रूरता और बढ़ जाएगी, वो और क्रूर बन जाएंगे, और दरिंदों को खाना खिलाओगे तो और दरिंदे बन जाएंगे वो, और कुछ नहीं होगा शरीर के स्तर पे, और उनके शरीर के स्तर की भावना बढ़ जाएगी, शरीर के स्तर पे दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे वो, यही करने वाले वो है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसको समझने के लिए, बट ऐसा ही है। तो यू क्रूअल अनकाइंड, येट ड्यू टू फॉल्स प्रेस्टिज यू आर थिंकिंग दैट यू आर प्रोटेक्टिंग द सिटीजंस। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो दरिंदे होते हैं उनको लगता नहीं मैं दरिंदा हूं, ये प्रॉब्लम है नहीं, उनको तो लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो मैं तो अच्छा आदमी हूँ। जैसे रघुवन सोच रहा है मैं तो राजा हूँ, मैं तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, वो तो सोच रहा है मैं तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, उन्हें अनएम्प्लॉयड पड़े रहेंगे। मगर एक्चुअली भरत महाराज ने बिल्कुल लॉजिक उल्टा कर दिया, तुम एम्प्लॉयमेंट नहीं, तुम अपने लिए यूज कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के झूठ में तुम अपने लिए यूज कर रहे हो। वरना इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता था, तुम कह सकते थे ना मैं राजा हूँ ना तुम सेवक हो, सब आत्माएं साथ मिलके काम करते हैं, खाना उगाते हैं, आराम से रहते, नहीं ये ऑल्टरनेटिव अच्छा है, नहीं अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं। सो ये जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे वो करेंगे, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को, मगर ऐसा लगता नहीं, उनको लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो इन बेचारों का क्या होगा, मर जाएंगे, कुछ मरेंगे नहीं, इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तुम मरोगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले भी चल रहा था काम नहीं, अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे क्या करेगा कोई, क्या करेगा वो, गांव चला जाएगा, खेती करेगा, यही करेगा ना। अगर आपने दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट देना बंद कर दिया, सपोज सब बंद हो गया, कॉर्पोरेट भी बंद, भीख मांगना भी बंद, सब कुछ बंद,
भूख कम हो जाएगी,
तो क्या करोगे आप लोग अपने हरियाणा चले जाओगे ना, वहाँ है तो जमीन है ना आप लोगों की, है ना, चले जाओगे कुछ तो होगा, चले जाओगे आप लोग, दिल्ली में क्यों रहोगे आप लोग, पता नहीं कहाँ जो भी है चले जाओगे, हमारे भी जमीन है खैर वैर, पता नहीं पूछता नहीं, वहाँ चले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, आप लोग भी सब कहीं ना कहीं, तो दिल्ली में कौन रहेगा, फिर चले जाएंगे खेती में, फिर अपना थोड़ा उगाएंगे, गाय रखेंगे, दूध पियेंगे, भजन करेंगे, यही करेंगे ना। सो दैट्स अ गुड आइडिया, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मगर गवर्नमेंट चाहती नहीं, कंट्रोल में रखना आती है ना, इसलिए एम्प्लॉयमेंट के झूठे उसमें लोगों को अपने अंडर रखते हैं,
भूख कम हो जाएगा,
है
थोड़ा फर्क उसका, भूख कम हो जाएगा,
ऑफकोर्स वही तो ये भरत महाराज यही ला रहे हैं। भरत महाराज कह रहे हैं दिस इज लूडिक्रस। भरत महाराज कह रहे हैं ये तो नॉनसेंस है जो तुम कर रहे हो, तुमने लॉजिक दिया बिल्कुल नॉनसेंस है कि मैं राजा हूँ, मैं सिटीजन्स की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन नहीं, तुम तो एक्सप्लॉयट कर रहे हो क्योंकि तुम शरीर के स्तर पे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई राजा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि राजा को प्रजा का पालन नहीं करना चाहिए। मतलब युधिष्ठिर महाराज ऐसे भी राजा हुए हैं, मगर युधिष्ठिर महाराज आत्मा के स्तर पे रहकर फिर पालन कर रहे थे, लोगों को आत्मज्ञान दे रहे थे। लोगों कह रहे थे समझो आत्माओं, अपना टाइम भजन में लगाओ। और युधिष्ठिर महाराज ने सबको सबके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ था कि उनको भक्ति में सहायता मिले, कोई एक्सप्लॉयट ना हो। नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, बट वट एवर ही इज डूइंग दिस इज crazy. You were such a fool that you could not have been adored as a great man in an assembly of persons advanced in knowledge. तो कह रहे हैं कि भी तुम बेवकूफों के बीच में महान हो, मगर बुद्धिमानों के बीच में सबसे बड़े मूर्ख हो। All of us on the surface of globe are living entities in different forms. Some of us are moving, some of us are not moving. कह रहे हैं कि भी हम सब तो है, मतलब हम सब जीवित वस्तु है। कुछ लोग कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। हम थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यही कहते हैं ना, पहले तो ये कहते थे एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। क्या कहते हैं, मिट्टी से पैदा हुए हो
मिट्टी
में मिल जाओ। वो भरत महाराज ये सिंपली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ यहीं से आ रहा है। सब वो कह रहे हैं कि भाई समझने की कोशिश, इन अदर वर्ड्स वी आर बट डस्ट एंड वी शैल बी बट अ डस्ट। Everyone can consider this point. कह रहे हैं भी समझने की कोशिश करो तुम। और मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, I'm just going forward. Okay. Since this universe has no ultimate existence, things within its shortness, difference, grossness, skinniness, smallness, bigness, living symptoms, materials are all imagined. तो कह रहे हैं कि भी देखो ये जो जैसे शरीर है मिट्टी का ढेला है ना, इसको नाम पुरुष किसने दिया है? हमने तो दिया है। मान लीजिए आप किसी और प्लेनेट पर चले जाओ, वहां पे हो सकता है कि इस रूप को औरत कहते हो, इस रूप को पुरुष कहते हो सकता है, नहीं हो सकता है। मगर हमने इसको पुरुष बोला है और इसको औरत बोला है, मगर कहीं और चेंज भी हो सकता है, हो नहीं सकता। हो सकता है कि इस रूप को हिजड़ा कहते हो, हिजड़ों को पुरुष कहते हो आप, और ये क्या है? मगर वहां पे ऐसे नाम और क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। नहीं सब इसलिए वो कह रहे हैं कि भी ये सब नाम तो बड़ा छोटा मोटा ये सब हमने नाम दिए हैं, ये सब इन चीजों को। ये संसार नाम और रूप से बना है और नाम रूप हमने दिए हैं संसार को। इन रूपों का नाम हमने फिक्स कर रखा है, ये। तो कह रहे हैं कि भाई ये सब तो इसलिए सब माया है। ये सब तुम सोच रहे हो अपने माइंड में, बस सोचते ही जा रहे हो तुम। व्हाट देन इज द अल्टीमेट ट्रुथ? तो कह रहे हैं समझने की कोशिश करो सत्य क्या है। ये नाम सब माया है, माया मतलब तुम्हारी क्रिएशन है, मानव की क्रिएशन। तो ये नाम माया है, ये रूप भी एक तरह से माया ही हो गया क्योंकि अल्टीमेटली तो मिट्टी है, आया चला गया। ये भी अभी है, कल नहीं होगा। तो इन सब चीजों के बीच में सत्य क्या है? क्या है सत्य, कोई बता सकता है? बहुत इजी है बताना। इन सब नाम और रूप के बीच में जो कि हमने इंसान ने बनाया है, जो कि अस्थाई है, जो आज होते हैं कल नहीं होते, सब माया ही है ना। कुछ इस सब अस्थाई चीजों के बीच में इस सब जो मन से उत्पन्न हुई चीजों के बीच में एक चीज है जो स्थाई है, वो क्या है आपको कैसे पता? क्योंकि किताब कह रही है, आपको कैसे पता? क्या कहते हैं
रिलेशनशिप?
मेरे सुन के क्या अंधे हो गया? अच्छा सबको अस्थाई है ये तो समझ आता है, ये मेरे सुनने ना सुनने में फर्क तो नहीं पड़ता ना, ये तो पता ही है, इसमें तो कोई छूट नहीं है, तो देख लो। मगर इसके बीच में एक स्थाई चीज है आत्मा, ये कैसे पता?
कोई तो अनुभव कर रहा है, अनुभव
क्या,
कोई तो परसीव कर रहा है
कुछ तो है, क्योंकि शरीर में से सब कुछ शरीर रहता है, एक कुछ पॉइंट कुछ भी निकल जाता है वो खत्म हो जाता है।
इसको इसको समझने के लिए ना आपको इसको समझना बहुत आसान है। आसान क्या, अभी एक सेकंड में समझ सकते हो अगर आप थोड़ा दिमाग खुला हो तो। क्योंकि सबसे स्थाई वस्तु क्या है, जितने भी अस्थाई वस्तु हैं वो हमारे बाहर है, और जो स्थाई है वो हम खुद हैं। आप खुद ही तो स्थाई हो, जो आप खुद हो उसको समझने में आपको टाइम क्यों लग रहा है? आंख बंद करो, मैं हूं तो हूं, मैं तो कभी खत्म नहीं होता। मतलब जो आप हो उसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं इल्यूजन, कि जो चीज नहीं हो वो समझ आ रही है, जो चीज हो वो समझ नहीं आ रही। बड़ी अजीब सी बात है, अदरवाइज बहुत इजी है। मतलब आप हो तो हो बस, मतलब आप 20 साल से हो ना, आपकी एज क्या है, 40 साल से आप हो या नहीं, या कभी नहीं थे? कभी ऐसा तो नहीं हो कि 2 मिनट के लिए नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हूं और हूं और हूं, बाकी सब कुछ चेंज होता जा रहा है, बस मैं हूं तो मैं स्थाई हूं, दैट्स ऑल फिनिश। ये फैक्ट, इसको एक्चुअली ये समझना ना बहुत, ये फैक्ट कोई नहीं झुठला सकता कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस तो स्थाई है ना, अनुभव तो स्थाई है, अनुभव करने वाला भी स्थाई है, जो मैं हूँ बस काम ख़त्म हो गया बस। भरत महाराज कह रहे हैं रघुगण इसलिए तुम बेवकूफ हो, इसलिए जिसको पता नहीं कि आत्मा है और आत्मा स्थाई है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसी के वो खुद है वो, और उसको खुद समझ नहीं आ रहा, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी बताना जरा। आपके बैग में ही 30 करोड़ रुपए हैं और आप भीख मांग रहे हो, और ये बैग में ही पड़े झोले। कहेगा भैया तू क्या मूर्ख है क्या, तू पागल है क्या तू? और भिखारी कहेगा नहीं मैं PhD हूँ फिजिक्स में, क्या कहोगे उसको? कहेगा फिर तो डबल पागल है, PhD फिजिक्स में तेरे बैग में 30 करोड़ रुपए पड़े हैं और तो भी ये भी समझ नहीं आ रहा PhD फिजिक्स करके, तो डबल पागल हो गया नहीं हो गया? तो जितनी PhD उतने ही पागल, डबल PhD तो डबल मूर्ख। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो जितना एजुकेटेड है उतना मूर्ख है, क्योंकि इतना एजुकेशन लेके भी उसको इतनी सिंपल चीज नहीं समझ आ रही कि सब टेम्पररी चीज में एक चीज था वो तुम खुद ही हो, उनमें क्या प्रॉब्लम है समझने। प्रभुपा कहते नहीं थे लेक्चर में व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ डिफिकल्टी, प्रभुपा कहते थे व्हाट इज अ डिफिकल्टी। कोई हम आसमान से तारे थोड़े ना तोड़ के सिखा रहे हैं, ये तो देख ही सकते हो आप क्या है, सिंपली अंडरस्टैंड। सब थोड़ा आग बंद करके सोचोगे ना कि क्या स्थाई है, आपको पता लग जाएगा मैं स्थाई हूँ बस। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना, ना मन स्थाई, मन तो हिल रहा है ना, मन तो थॉट्स आ रहे हैं ना, मन तो स्थाई है ही नहीं, शरीर भी स्थाई नहीं, शरीर चेंज हो रहा है, बाहर की चीज़ें तो है ही नहीं स्थाई। तो जो मैं अनुभव करने वाला हूँ वो स्थाई है, क्योंकि मेरा अनुभव तो 24 घंटे चल रहा है ना, और जो अनुभव करने वाला वो भी स्थाई है, आत्मा खत्म हो गया बस, फिनिश। ये पजल तो साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिंपल चीज एक्सप्लेन नहीं कर, एक्सेप्ट नहीं करना कि सोल है। सो द आंसर इज दैट नॉन ड्यूअल नॉलेज इज अल्टीमेट ट्रुथ। आंसर है सत्य वो है जो स्थाई है, जो अस्थाई है वो असत्य है, बस सिंपल चीज। तो अस्थाई के पीछे मत जाओ, स्थाई चीज के पीछे जाओ, स्थाई चीज। इट इज डिवॉइड ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ मेटेरियल क्वालिटीज, इट गिव्स अस लिबरेशन, मोक्ष मिलेगा। इट इज वन विदाउट सेकेंड, ऑल परवेडिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो अगर मैं स्थाई हूं आत्मा, तो कोई परमात्मा भी होनी चाहिए, नहीं जो इस सबको कंट्रोल कर रही है। मैं तो नहीं कंट्रोल कर रहा ना इस सबको, इन अस्थाई चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, मैं आपको कर रहा, आप तो अपने शरीर को भी नहीं कर रहे, तो कोई तो कंट्रोल करने वाला होगा, तो कहते हैं परमात्मा। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा हम एक जगह, एक जगह, बस फर्क ये और कुछ नहीं है। सो और उस परमात्मा का नाम क्या है? वासुदेव या कृष्णा, ये सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे लॉजिकली डेवलप कर सकते हो थीम को। ये कुछ मुश्किल है समझना? कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एक सेकंड में बता सकते हो तुम आत्मा, एक सेकंड में, कोई तो बड़ी बात नहीं है। और आप आंख बंद करके कन्विंस भी हो सकते हो मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही नहीं शरीर, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों की बात है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर मन के हाथ बह जाओगे तो नहीं सोच पाओगे, बस ये है। हमें समझ नहीं आता क्योंकि मन के हाथ बह जाते हैं, आँख बंद करते हैं विचार आते हैं बह जाते हैं। इसलिए आप मन से अलग होके देखोगे ना तो समझ आने लगेंगे चीज़ें आपको। हाँ यार, मतलब एक्चुअली आई एम डिफरेंट, मैं थोड़े ना मैं सोल हूँ। और ये जो ज्ञानी योगी यही मेडिटेशन करते हैं, उनकी मेडिटेशन यही होती है, बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं मैं अलग हूँ सबसे और मैं आत्मा हूँ, उनकी मेडिटेशन यही चलती है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ध्यान लगाते हैं। भक्त हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग भगवान, हम लोग परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, आत्मा पे नहीं। हम लोग भगवान पे ध्यान लगाते हैं। सो भगवान पे ध्यान लगाने से आत्मा का अनुभव अपने आप आ जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपने आप सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो कृष्ण रूपी सूर्य अगर हृदय में आ गया तो अपने आप दिखाई देने लगेगा मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, सबसे अलग हूँ। तो एक तरीका है कि आप अपने आप से ध्यान लगाओ कि मैं अलग हूँ, प्रैक्टिस करो पता लग जाएगा आपको। एक तरीका है कि भक्ति करो तो वो अपने आप भगवान के प्रेम के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देने लगेगा। और जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लग रही थी वो एक सेकंड में पता लग जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं। इट्स इज एज सिंपल एज दैट माय डियर किंग रहुगन, अनलेस वन एज अपॉर्चुनिटी। ये आ गया श्लोक। तो इस चीज़ को अनुभव कैसे करें कि मैं आत्मा हूँ, अलग नहीं हूँ? माय डियर किंग, अनलेस वन एज अपॉर्चुनिटी टू स्मियर इज एंटायर बॉडी विद डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, वन कैन नॉट रियलाइज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जब तक हम महान वैष्णवों के चरण रज अपने सर पे नहीं लगाएंगे तब तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकती। कहने का मतलब है कि हमें डिवोटीज की बात फॉलो करनी पड़ेगी, आप फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर हम अपनी अपनी करते रहेंगे तो संसार में ये चीज़ों में उलझे रहेंगे और कभी नहीं समझ पाएंगे कि इतनी सिंपल सी चीज़ भी पूरी ज़िंदगी समझ नहीं आएगी। इसलिए तो लोगों को समझ नहीं आता, नहीं क्यों नहीं आता, भागते ही तो जा रहे हैं, टाइम ही नहीं सोचने का, टाइम का है नहीं, अभी इतना ट्रैफिक था, भाग रहे हैं बस। इतने जल्दी में है कि, और इतना फोकस्ड है कि गुड़गांव पहुंचना है, कोई आदमी में आ जाए कुचल देंगे उनको, समझ नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता, टाइम ही नहीं है खड़ा होने का, है नहीं, स्पीड पे है, स्पीड में भैया पहुंचना है, लेट हो गए, ट्रैफिक है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब अगर ऐसी लाइफ चलेगी तो जब सोच ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे समझ कैसे आएंगी चीज़ें? नहीं, पहले सोचना पड़ता है ना चीज़ों पे। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग अपने इंस्ट्रक्शन से आपकी लाइफ को सिंपल बना देते हैं कि सोचने का टाइम मिल जाए। तभी हम लोग बोलते हैं टीवी मत देखो, टीवी देखोगे सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, पहले ही कूड़ा घुस जाएगा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे आप, मतलब गंदी चीज़ें देख के गंदे विचार आने लगेंगे, उल्टी फुल्टी चीज़ देख के अजीब गंदे गंदे इमोशंस हो जाते हैं ना, इमोशंस, फिर माइंड अजीब सा हो जाता है, वायलेंस होता है टीवी में, नहीं अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर क्या करोगे आप? वन कैन नॉट रियलाइज एब्सोल्यूट ट्रुथ सिंपली बाय ऑब्जर्विंग ब्रह्मचारी, यानी सिर्फ ब्रह्मचारी बनने से नहीं समझ आएगा आपको ये, या तपस्या करने से, या गृहस्थ आश्रम के नियम पालन करने से, या वानप्रस्थ से, या संन्यास से, इस सब से भगवान की प्राप्ति, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। देर आर मेनी अदर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रिवील्ड टू वन हु हैज अटेंड मर्सी ऑफ ग्रेट डिवोटीज। मगर जिसके पास कृपा है भक्तों की वो ही अनुभव ले सकता है, अनुभव वरना नहीं ले सकता। मगर कृपा लेने के लिए भी आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको दम चाहिए, नहीं कृपा लेना भी मुश्किल है, क्योंकि कृपा किस रूप में आती है भक्तों की, उनकी सेवा, उनके उपदेशों के रूप में, और वो उनकी बात मानना बड़ा मुश्किल होता है। बात नहीं मानते ना, हम अपना दिमाग लगाते हैं और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये है वो है, और अपने लाइफ वेस्ट कर देते हैं। बट जिन लोगों ने बात मान ली वो निकल गए, जैसे ये कल ही बताते हैं, मैं कृष्णदास महाराज, प्रभुपाद ने बोला था उनको, 40 इयर्स के थे, प्रभुपाद ने बोला था कि तुम घर छोड़ दो, छोड़ दिया उन्होंने। अब 40 इयर्स में उनकी 3 लड़कियां थी, छोटी बच्ची, प्रभुपाद ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। उनको ये श्लोक समझ आ गया नहीं कि भक्तों के चरण रज से अभिषेक करना है। मतलब आजकल आजकल क्या होता है, आजकल आजकल तो वैष्णव गुरु आते हैं, उनकी मिट्टी लेकर चाटते रहो, चाट लो, पूरी मिट्टी खा जाओ उनके पैर का निकाल के, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा। वो मिट्टी लेने का, वो मिट्टी लेना तो एक एक सिंबल है कि मैं आई एम डेडिकेटेड टू यू, आप जो बोलेंगे मैं, तो मैं आपके चरणों की मिट्टी खा सकता हूँ, तो आपके उपदेश नहीं पालन कर सकता, कहने का मतलब ये है। मगर हम इतने शूद्र हैं कलयुग में, मिट्टी खाऊंगा मगर बात नहीं मानूंगा। पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है ना। तो हम वैष्णव के सेवकों के सेवकों के सेवक के, आप बात नहीं मानोगे तो। प्रभुपाद ने बोला अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो रेजर है आराम से चलाओ, तेज चलाओगे कट जाएगा, अगर तुम तेज चलाओगे फिर भी कटेगा, तो प्रभुपाद कह रहे मैं कर सकता हूँ इसमें, तो मेरी बात नहीं मानोगे तो कटेगा, है नहीं। सो इसलिए रघुगण महाराज कह रहे हैं कि भैया आप कुछ भी कर लो, आप परफेक्ट ब्रह्मचारी बन जाओ, आप परफेक्ट गृहस्थ आश्रम बन जाओ, आप परफेक्ट तपस्या कर लो, मगर भक्तों की बात नहीं मानोगे तो फेल हो जाओ। और ये नॉर्मल, मतलब ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप अपने आप से कितना ही पढ़ लो, आप किताबें, अगर टीचर की बात नहीं मानोगे फेल हो गए, हो गए नहीं हो गए, टीचर एक्सपीरियंस्ड है ना, टीचर को पता है क्या 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 कैसे कैसे करना है, क्या करना है ना। सोचो कि नहीं खुद करके कर लूँगा, सब कुछ तो कर रहा हूँ मैं, फेल हो जाओगे आप, कुछ नहीं हो गए, नहीं हो गए, कुछ भी नहीं आएगा। सो इसलिए कह रहे हैं, वॉज अटेंड द मर्सी ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, जो भक्तों की बात मानता है, अपना माइंड साइड में रख के बस मान लो, बस भक्त का घर छोड़ो, छोड़ दो, कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई कहेगा छोड़ दोगे, यस या नहीं, नहीं छोड़ पाओगे। अगर अभी महाराज कहते हैं चलो छोड़ दो, अनुराग छोड़ दो, घर अंजू को बेटों को, आ जाओ आश्रम, आप छोड़ोगे, नहीं छोड़ सकते, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि तो आनंद भी नहीं छोड़ पाएगा, क्यों आनंद छोड़ दोगे, हो सकता नहीं है। अगर महाराज अभी कहते हैं छोड़ दो वाइफ और बच्चे को, आ जाओ, आनंद शायद एक पॉइंट कर जाए, मगर बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया कि वैष्णवों के चरण रज से अभिषेक का मतलब क्या है। जिसको समझ आ गया ना, वो बस देखता नहीं फिर पीछे। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो वैष्णव उल्टे फुलटी बातें बोलते रहते हैं, ये सबको बोलते रहते, तू भी छोड़ दे, तू भी छोड़ दे, आ जा भैया, ये तो केओस ही हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। बट एक एग्जांपल, ये तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन हो गई जो हम नहीं देते, बट पॉइंट है कि अभी तुम इतनी बड़ी नहीं कर सकते, छोटी छोटी तो बात मान लो, ये पॉइंट है। अगर एक प्रिंसिपल समझ आ जाएगा तो आपको बात मानने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, है नहीं। जैसे कि हम कितने गृहस्थों को बोलते हैं कि भी बाहर मत खाओ, उनके लिए वही पहाड़ है, मतलब और जाओ आप महाराज के डिसाइपल्स बाहर, कहते हैं नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, नहीं सिंपल सी चीज़ है, नहीं और या मान लीजिए टीवी मत देखो, भैया कैसे हो सकता है, ये है वो है, तो हाड़ में जाए टीवी क्या नहीं देगा। एक मैं अमेरिका में एक डिवोटी थे, डिवोटी मैं उनके घर गया था। सो डिवोटी हिज वाइफ इज अ डिवोटी, बच्चा भी डिवोटी है, बट वाइफ और बच्चे टीवी से एडिक्टेड एज यूजुअल, मतलब होता नहीं होता है। तो मैं उनके घर प्रोग्राम देने गया, तो मैंने कहा अच्छा मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, मैंने कहा चलाना जरा प्रेजेंटेशन। तो कहते हैं भैया ऐसा है कि टीवी तो टूटा हुआ है। मैंने कहा टूटा हुआ है? मैंने टूटा कैसे है भाई? तो कहता है कि ये इतना टीवी देखते, मैंने बॉल उठा के मारी टीवी पे, तोड़ ही दिया और कहानी ख़त्म, और सही नहीं कराया उसने, बस इनका इनका जड़ ही ख़त्म कर दिया। बस तब से चीची चू चू किए दो दिन, फिर शांत बैठ गए, अब अपना कुछ कुकिंग वुकिंग में एंगेज हो गए, हारमोनियम वगैरह बजा रहे, कुछ और करने लगे। एक सिनसिनेटी में भी एक डिवोटी का गया था, मतलब इज नॉट अ डिवोटी, इनिशिएटेड नहीं है वो, उसने खुद गीता पढ़ी और अब थोड़ा सेंटिमेंटल है, मगर उसने गीता पढ़ी और वो प्रीचिंग करना आता था, इस्कॉन सेंटर हेल्प नहीं कर रहा था उसको प्रीचिंग में, एज यूजुअल नहीं, ये करो वो करो वो करो। तो उसने कहा यार हद हो गई, तुम प्रीचिंग नहीं करने दे रहे गीता की, कॉलेज में प्रोफेसर है। उसने कहा यार मैं प्रोग्राम करना तो तुम आना नहीं चाहते। कह रहे नहीं यार पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इस्कॉन से, फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम, भाड़ में जाओ यार तुम। तो बड़ा परेशान हो गया। तो रात को उसको सपना आया भगवान का, समथिंग भगवान ने कहा कि तुम करो मैं तुम्हारे साथ, तुम गीता प्रीचिंग करो। तो अब क्या था सपना बता नहीं, मगर उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसने अगले दिन चला गया डायरेक्टर के पास सिनसिनेटी। मैंने कहा मैं तो गीता का प्रोग्राम करना, तो आप परमिशन दो। उसने परमिशन दे दी, कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसने कहा मैं स्पॉन्सर करना, 1000 गीता बांटना आता हूँ, वो भी परमिशन मिल गई, प्रसाद स्पॉन्सर हो गया, काम हो गया। तो उन्होंने कहा यार ये तो, उसको लगा कि सपना समा हुई है ना। तो फिर उसने गीता पढ़ी, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई टाइम मत वेस्ट करो, टीवी भी मत देखो। वो घर आया, एंटीना काटा, टीवी पैक किया, स्टोर में फेंक दिया उसने उठा के। उनके भाई बच्चे भैया क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हाथ से यही होगा, रहना है तो रहो, निकलना है यहाँ से। ये क्या हो गया? तो टीवी हटा तो क्या एक्चुअली, फिर मैंने उससे पूछा है टीवी हटा तो ऑफ कोर्स सिचुएशन कैसे कंट्रोल हुई, मतलब बच्चे टीवी देखना चाहते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद उस बच्चे ने अपने आप हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया, पियानो वैनो हारमोनियम पढ़ा था ना, वो अपने आप वहाँ पहुँच गया, बजाने लगा उसकी, फिर उसको हारमोनियम में इंटरेस्ट आ गया। अब एक साल में वो बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर है। उसने कहा वो स्किल्स में चला गया, वो मृदंग सीख रहा है, हारमोनियम सीख रहा है, डांस सीख रहा है, पेंटिंग सीख रहा है। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया यार, वो आंखें फोड़ फोड़ के टीवी में गंदी चीज़ें देखता था। तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगा, बट हो गया। सो इसलिए इस संसार में कोई भी चीज़ आराम आराम से नहीं होती, एक झटके में ही होती है सब कुछ। जो सोचता है ना कि आराम आराम से कर लेंगे, जो सोचता है यार अभी बस धीरे धीरे फुल टाइम बनूंगा, अभी थोड़ा सोच लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं, नहीं आगे क्या होगा फ्यूचर का, वो कभी फुल टाइम नहीं बन सकता। फुल टाइम बना आता है, आंख बंद करो बन गया, अभी देखा जाएगा। ऐसे ही होता है, आपको टीवी हटाना है ऐसे ही होता है, आंख बंद करो फेंक दो खिड़की से नीचे, चलो भैया अब बताओ, अब बताओ, अब रोक, अब बताओ क्या करना है। टीवी तो आएगा नहीं, खत्म कहानी। होता ऐसे ही, जिन डिवोटीज ने किया है उनका हो गया है, जो सोचते रहे उनका नहीं हुआ। अब वो क्यों कर पाए, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वैष्णवों की इंस्ट्रक्शंस पे फेथ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ट्रूथ इज रिवील टू वन हु हैज अटेन्ड मर्सी ऑफ ग्रेट डिवोटीज। सो महान भक्तों की कृपा लेने के लिए भी महान बनना पड़ता है, ये शास्त्रों में लिखा है। महान गुरु और महान शिष्य तब भक्ति प्रकट होती है। महान गुरु मूर्ख शिष्य हो, तो महान शिष्य मूर्ख गुरु हो तब तो अब तो गुरु बंटाल है। होता है सही है, नहीं आप लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं है, मतलब बाहर मत खाओ, एक ही दिन आपने डिसाइड किया होगा और अब से नहीं खाएंगे, धीरे धीरे थोड़े ना किया होगा। अब सोचते हैं यार चाय छोड़े नहीं छोड़े, पता नहीं वो क्या कहेगा, नहीं नहीं पीने, ऐसे ही छूटा है ना, सब चीज ऐसे छूटती है, सब चीज ऐसे छूटती है। मैंने भी घर ऐसे छोड़ा था, सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, घर आने का छोड़ दो, सोचा ही नहीं मैंने, मैंने कहा छोड़ दिया, अब सो गया बस, सो देखा जाए, छूट गया, वरना कुछ नहीं छूटता। सो उसका बल कौन देता है? वैष्णव। वो छोड़ने का बल कौन देगा? वो वैष्णव के उपदेश, पढ़ने से नहीं आएगा। तभी तो कह रहे हैं ब्रह्मचार्य से, पालन करने से, शास्त्र पढ़ने से बल नहीं आता, ज्ञान आ जाता है, बल नहीं आएगा, आप छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ने के लिए तो बल चाहिए ना, ज्ञान थोड़े ना चाहिए, सिर्फ जिगर चाहिए, नहीं देखा जाएगा, तब होती है चीज़, वरना नहीं होती। या जैसे हम बोलते हैं चैंटिंग करो 16 माला, शुरू में तो मुश्किल होती है लोगों को, यार एक माला दो माला बड़ी नहीं रही, क्या करें कैसे करें, 16 माला करनी है तो पता क्या होता है, कल तो 16 माला करेंगे, बस तब हो जाती है। अब सोचोगे यार अभी एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर नीचे आ जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, ऐसा होता नहीं। ये अब वैष्णव बोला 8 वाला करनी है, चलो करनी है, अब 16 वाला करनी है, चलो करनी है, बस माइंड बना लिया तो हो जाता है। 4-5 दिन मुश्किल होगी तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। सो भक्तों से बल मिलता है। भरत महाराज ने अपनी एनालिसिस दे दी। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई स्टॉप हियर, गुड नॉट टू स्टॉप। क्या कहते हैं
प्रभु जी? अभी आपने बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो जो भगवान ने वर्णाश्रम वाला सिस्टम दिया है शूद्रों वाला, तो उसका मतलब वो फिर अप्लाई नहीं होगा इस चीज़?
नहीं, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसमें एम्प्लॉयमेंट तो बिना स्वभाव के एम्प्लॉय किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट सबको एम्प्लॉय कर लो एक ही चीज़ में, उसमें नेचर नहीं देखी जाती। वर्णाश्रम में नेचर के अकॉर्डिंग उसको सर्विस दी जाती है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो भाई आप जो नहीं चाहते वो करवा रहा हूँ ना मैं, एम्प्लॉयमेंट हो गई। मैं एम्प्लॉय किया, तू नहीं करेगा गेट आउट। वर्णाश्रम ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम में भी जो आपको अच्छी सर्विस लगती है वो करो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जैसे आपका मन शांत है, जो आपका स्वभाव है वो करो। और जब मन शांत होगा तो भगवान की सेवा अच्छी होगी। तो वो एम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल अलग है। वो लगता सेम है कि वहाँ पे जो शूद्र है वो भी झाड़ू मार रहा है, गांव में जो झाड़ू मारने वाले या जो वॉशरमैन होते हैं भी, वो भी एम्प्लॉयड नहीं है वो, बल्कि गांव में रिस्पेक्ट सबकी होती है, ऐसी बात नहीं होती थी पहले। है ना, वॉशरमैन की भी उतनी रिस्पेक्ट होती थी, वो भी राम राम सब आराम से बैठते थे, शाम को आराम से बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं होता।
भंगी नहीं कहते थे,
भंगी नहीं कहते थे, ऐसा नहीं हो, मैंने भी देखा है। मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो डिसरिस्पेक्ट भी है। हम भी कहते थे, नौकर को नौकर ना कहते थे, हम तो सोवन सिंह भैया कहते थे, अम्मा कहते थे,
अम्मा
जो हमारे यहाँ जो काम करने वाली होती थी, काम करने वाली उन्होंने ना कहते थे, उसका स्वभाव उसको उसी में अच्छा लग रहा है, ठीक है तुम वो कर लो। ब्राह्मण का स्वभाव है पढ़ाना तो वो करो, अपने स्वभाव के अनुसार है, रिस्पेक्ट सबके लिए, मतलब ये थोड़े ना वो नीचे है वो ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। वो फिर आसुरी वर्णाश्रम है।
तो इसका मतलब अभी जो इतनी एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने इवन मेड या सर्वेंट्स रखे हैं तो उन सबसे फिर पाप लगता है?
देखो भी उससे एक पहली बात तो हेल्थ खराब होगी आपकी, पाप तो छोड़ो बड़े पड़े हैं। और मेड सर्वेंट्स रख रहे हो, दूसरी बात यह है कि ये फीमेल्स पता नहीं उनको कब मेंसेस होती है, क्या बकवास औरतें हैं, नहाती वहाती भी नहीं है वो, आप घर साफ कर रही है अनक्लीन कर रही है, मैं तो बहुत डाउट में हूँ। नहीं फ्रेंकली बताऊँ, मतलब बाहर वैसे आपको साफ लग रहा है, मगर सब कुछ गंदा करके जा रही है, साफ कर रही है, ये मुझे नहीं पता। अशु अशु मतलब वही है। अब तीसरी बात है कि पाप है, यानी पाप नहीं कह सकते उसको एक एंगल में, क्योंकि आप पे कर रहे हो ना उसको, ये आपने उसको फोर्स तो नहीं किया, आपने बोला लेनी है ले लो, अब निकलना उसकी मर्जी है ना, आप उसको फोर्स करके स्लेव थोड़े ना है वो, तो आप पैसे से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो पाप नहीं है, उसको पाप नहीं कहा जाता। हाँ मगर ये बात जरूर है कि स्पिरिचुअल लेवल में तो एक्सप्लॉयटेशन ही चल रही है, क्योंकि व्योगन महाराज यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम हाई फाई हैं, तुम पैसे दे के अपना काम करा लेंगे और हो जाएगा। वो एक्सप्लॉयटेशन तो एक लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, क्योंकि हम सोल के लेवल पे नहीं देख रहे ना हर एक को, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी हैं। अब आप उसको अगर मान लीजिए अब सिटी लाइफ में दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब पे जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा फिर, काम कौन करें। सो प्रैक्टिकली चीज़ें चलती हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा सिटी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिटी लाइफ में हम ना चाहते भी फंसोगे चीज़ों में। तो प्रभुपाद ने कहा बेस्ट है सिटी छोड़ के वर्णाश्रम में जाओ, इसमें तो सिटी लाइफ में तो भी जो बेस्ट कर सकते हो कर लो, नीडफुल टाइम बचाओ, भक्ति करो। ये पाप तो सिटी लाइफ में तो सभी पाप है, अजीब सही है सिटी लाइफ तो। बट अगर आप मेड सर्वेंट नहीं रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं आप लोग कितने बिजी हो, मुझे नहीं पता, हेल्थ अलाउ करती नहीं करती है, आई डोंट नो, घर के बहुत काम भी होते होंगे, होते नहीं होते पता नहीं क्या होता, हाउस वाइफ के लिए होते नहीं होते। सो अब पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो काम हो जाते थे, उसने कर लिया उसने, है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ता था। अब मेड सर्वेंट रखनी पड़ती है, उनसे कराओ, उनसे कहो बर्तन धो यार, वो छोटा माता पिता कर रहे
हैं,
लग जा तू। अमेरिका में करते हैं, एटलीस्ट मेड सर्वेंट किचन में नहीं जानी चाहिए, इतना अगर अवॉइड कर सकते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे उस घटिया औरत, घटिया सॉरी टू से लाइक दैट, बट अनक्लीन है, माइंड अनक्लीन है, गंदी मेंटालिटी भी तो होती है उनकी, चोरी की, चकारी की, लोग उससे आते हैं ना स्टेटस से, और किचन में तो भैया बहुत मुश्किल है, वो भी भगवान के लिए अगर आप बना रहे हो तो वो आपके वेसल्स, मतलब आपके वेसल्स से वही धो रही है ना मेड सर्वेंट, हम भी ले रहे हैं। आई थिंक वी शुड नॉट टेक फ्रॉम नाउ, इट्स अ वेरी बैड थिंग, वो पता नहीं क्या कैसे किस पोजीशन में है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर स्पिरिचुअलिटी। सो बाकी कर ले, किचन का आप लोग अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लो। बर्तन धोने में कितना टाइम लगता है, कितना लगता है, ज़्यादा थोड़ा ना लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता होगा,
दिन भर ही होते रहता है,
हैं
बर्तन तो दिन भर ही होते रहते हैं, पूरा दिन कुछ कुछ बनता रहता है।
हाँ तो उसी टाइम धोके फिर रखते रहो,
साथ साथ करते रहते हैं, बट फिर भी एक बार तो करके जाते
हैं। क्यों क्यों करके आती है, शाम को आदित कर दे, कभी माधव कर दे, कभी अनुराग कर दो, कभी आप कर दो। हाँ तो जो आप खुद खा रहे हो वो हैबिट बनाओ कि खुद धोके रख दो उसी टाइम, तो आप लोगों की गंदी आदत है, वो झूठा रख दिया उसने, झूठा रख दिया उसने, झूठा रख दिया, आदत गंदी है। तो आप ट्रेन करो अपने बच्चों को भी, तूने खाया धोके रख दू, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व करता हूँ बर्तनों की। बाकी कुकिंग तो बड़ों में कमी होती है, मैं वो अपने 5 मिनट में धुल जाते हैं। अब अवॉइड कर सकते हो आप बिल्कुल मेड सर्वेंट को किचन में जाने में, वो क्यों जाएगी किचन में। पहले ज़माने में तो मुझे याद है मेरी दादी के यहाँ अगर नहा के नहीं जाओ बतंगड़ कर देती थी, साड़ी अलग होती थी, उसकी बहू को भी नहा देती थी, चल दूर रहे, होता नहीं होता था, मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब बहुत इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। अब मुझे समझ आता है कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं था, उसके पीछे एक रीज़न था, बीमार भी हो गए, डेंजरस। सही है, तो ये प्रैक्टिकल है, बाकी पाप वाप नहीं है वो भूल लो, वो चलो छोड़ो। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।